SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम तुमको न भूल पाएंगे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कात्यायनी। बॉलीवुड में मुगल पृष्ठभूमि पर कई फिल्में बनती रही हैं और कई अभिनेता ऐसे भी रहे जिनके ऊपर इन किरदारों को करने की वजह से मानो मुगल शहंशाह का ठप्पा ही लग गया। ऐसे ही एक अभिनेता रहे हैं जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं। ये बॉलीवुड में मुगल सम्राट के किरदार में एकदम फिट बैठा करते थे। ये थे तो बंगाली, लेकिन उर्दू भाषा में इनका सानी कोई नहीं रहा। पर्दे पर राजा महाराजा और शहंशाह के रूप में हमेशा दिखने वाले इस कलाकार का असल जीवन मुफलिसी में गुजरा। इनकी जिंदगी पर्दे पर तो बहुत अच्छी रही, लेकिन असल जीवन में उन्हें खुशियां बहुत ही कम मिली। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता प्रदीप कुमार की। 4 जनवरी 1925 को पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण परिवार में जन्मे शीतल बटावली उर्फ प्रदीप कुमार बचपन से ही फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखा करते थे। वो अपने जीवन के शुरुआती दौर में रंगमंच से जुड़े, हालांकि इस बात के लिए उनके पिताजी राजी नहीं थे। 17 साल की कम उम्र में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। वर्ष 1944 में उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस से हुई, जो एक नाटक में प्रदीप कुमार के अभिनय को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्हें प्रदीप कुमार में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी बंगला फिल्म अलकनंदा में उन्हें काम करने का मौका दिया। बतौर नायक प्रदीप कुमार की दूसरी बंगला फिल्म भूली नाये ने सिल्वर जुबली मनाई। प्रदीप कुमार ने फिर हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया और वर्ष 1949 में प्रदीप कुमार अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आ गए और कैमरामैन धीरेन डे के सहायक के तौर पर काम करने लगे। वर्ष 1949 से लेकर 1952 तक वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिर वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म आनंद मठ में प्रदीप कुमार पहली बार मुख्य अभिनेता की भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर जैसे महान अभिनेता भी थे, फिर भी वो दर्शकों के बीच अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म की सफलता के बाद प्रदीप कुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। जब प्रदीप जी से पूछा गया था कि आप जब फिल्मों में आए थे तब कैमरे के जरिए आर्टिस्ट को देखा करते थे, लेकिन अब जब आप कैमरे के सामने आ गए हैं, ये बदलाव आप कैसे महसूस करते हैं? प्रदीप जी ने कहा था, आईने के पीछे आईना नहीं होता, लेकिन जो मवाद उसके पीछे लगाया जाता है वही आईने को आईना बनाता है। अब देखो ना, दुनिया नाम की इतनी बड़ी फिल्म बनाने वाला खुदा भी तो 7 पर्दों के पीछे रहता है। वर्ष 1953 में फिल्म अनारकली में प्रदीप कुमार ने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई, जो दर्शकों को काफी पसंद आई, और इसके साथ ही वो ऐतिहासिक फिल्मों के लिए निर्माता निर्देशक की पहली पसंद बन गए। 50 और 60 के दशक में फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के लिए जब भी किसी राजा महाराजा या फिर राजकुमार अथवा नवाब की भूमिका की जरूरत होती थी, वो प्रदीप कुमार को याद करते थे। उनके उत्कृष्ट अभिनय से सजी फिल्म अनारकली, ताजमहल, बहू बेगम और चित्रलेखा जैसी फिल्मों को दर्शक आज भी नहीं भूले हैं। वर्ष 1954 में प्रदर्शित फिल्म नागिन की सफलता के बाद प्रदीप कुमार दर्शकों के चहेते कलाकार बन गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए और इसमें गीत मंडोले मेरा तंडोले, मेरा दिल ये पुकारे आजा श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए। वर्ष 1956 प्रदीप कुमार के सिने करियर का सबसे अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी 10 फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें शीरीन फरहाद, जागते रहो, दुर्गेश नंदिनी, बंधन, राजनाथ और हीर जैसी फिल्में शामिल हैं। और इसके बाद प्रदीप कुमार ने फिल्म एक झलक, अदालत, आरती, चित्रलेखा, भीगी रात, रात और दिन, बहू बेगम जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। प्रदीप कुमार ने वर्ष 1969 में प्रदर्शित सुपरहिट फिल्म संबंध में चरित्र भूमिका निभाई और सशक्त अभिनय से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। प्रदीप कुमार की जोड़ी मीना कुमारी के साथ खूब जमी। उनकी जोड़ी वाली फिल्मों में अदले जहांगीर, बंधन, चित्रलेखा, बहू बेगम, भीगी रात, आरती और नूरजहां शामिल हैं। इसके बाद प्रदीप कुमार ने फिल्म महबूब की मेहंदी, समझौता, दो अनजाने, धर्मवीर, खट्टा मीठा, क्रांति, रजिया सुल्तान, दुनिया, मेरा धर्म और वारिस जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल पर राज किया। हिंदी फिल्मों के अलावा प्रदीप कुमार ने बंगला फिल्मों में भी अपने अभिनय का जौहर दिखाया। इन फिल्मों में भूली नाई, गृहदाह, दास मोहन, देवी चौधरानी, राय बहादुर, संदीपन जैसी फिल्में शामिल हैं। प्रदीप कुमार को फिल्मी पर्दे पर जितना अधिक प्यार मिला, उनका निजी जीवन उतना ही दुख से भरा रहा। उनके बच्चों ने उन्हें लकवे की हालत में अकेला छोड़ दिया। प्रदीप कुमार की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब बीमारी की हालत में उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। लगभग 4 दशक तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाले प्रदीप कुमार 27 अक्टूबर 2001 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम तुमको ना भूल पाएंगे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सबसे ये वादा, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे और ऐसी ही किसी और शख्सियत के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाजत। बाय बाय।